सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, मानव जीवन की समस्याओं पर हम लोग विचार कर रहे हैं और कल प्रातः काल की बैठक में अपने विचार विमर्श से हम लोगों ने यह पाया कि मानव जीवन का सुंदरतम चित्र जो है वह सत्संग के प्रभाव से ही अभिव्यक्त होता है। इस जीवन की विशेषताओं पर ध्यान दिया जाए और वह क्या है कि इस जीवन में एक ओर जहाँ संसार के प्रति आकर्षण मालूम होता है, दूसरी ओर इसी व्यक्तित्व में सत्य की खोज भी रहती है और उसी में अनंत अगाध प्रेम रस की प्यास भी रहती है, तो निरंतर परिवर्तनशील दृश्यों के प्रति आकर्षित होना यह भी हम लोगों ने अपने में पाया और निर्वाण विनाश के क्रम को देखकर सत्य क्या है, जीवन क्या है, सदा के लिए रहने वाला क्या है, सत्य की खोज यह भी मनुष्य के जीवन की स्वाभाविकता है और ऐसा संयोग बने कि कभी वियोग न हो, ऐसी प्रियता जीवन में रहे कि जिसकी कभी क्षति न हो, यह मांग भी मनुष्य के जीवन में है और इसी से प्रेरित होकर हम सब भाई बहन संसार के साथ भी संबंध बनाते हैं और अदृश्य परमात्मा की भी चर्चा करते हैं। तो आप सोच करके देखिए, परमात्मा की आवश्यकता, परमात्मा को तो है नहीं और जड़ जगत को भी नहीं है, वनस्पति धरती आकाश पत्थर इनको परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, ये महसूस नहीं करते हैं। तो जड़ जगत को भी परमात्मा की आवश्यकता नहीं है और परमात्मा स्वयं अपने आप में पूर्ण है, सर्वज्ञ है, उसको तो जरूरत हो ही नहीं सकती। तो हमारे सामने एक ओर दृश्य जगत है और दूसरी ओर उस जगत के निर्माता के रूप में परमात्मा के संबंध में कुछ धारणाएं हैं हम लोगों के जीवन में और दोनों के मध्य में हम लोग हैं, मनुष्य है। तो मनुष्य ही संसार के संबंध में विविध प्रकार की धारणाएं बनाता है और विविध प्रकार का व्यवहार करता है और मनुष्य ही परमात्मा के संबंध में विविध प्रकार की धारणाएं बनाता है और उनकी चर्चा करता है। प्रधानता आपकी है। अब फिर इसके आगे और देखिए, बड़े सुंदर सुंदर दृश्य संसार में बनते हैं, प्राकृतिक दृश्य, सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रंग दिखाई देते हैं, पंखुड़ियों की कोमलता देखने में आती है, बड़ी सुगंधी फैलती है। तो जिस प्रकृति के इस अंश में इतनी सुंदरता, इतनी सुगंधी, इतनी कोमलता है, प्रकृति स्वयं उसको नहीं पहचान पाती। फूल खिला है उसको देख करके मुग्ध होने वाले आप हैं। फूल को स्वयं नहीं पता है कि मैं कितना सुंदर हूँ, कितना आकर्षक हूँ। ठीक है जी, उसमें सौंदर्य उपासना की शक्ति नहीं है, उसको ये ज्ञान नहीं है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत सुगंधित हूँ। उसमें बड़ी सुंदरता है, उसमें बड़ी सुगंधी है, इस बात का ज्ञान मनुष्य को होता है, उसकी सुंदरता पर आकर्षित मनुष्य होता है और मनुष्य की ही यह हृदयशीलता है कि प्रकृति जगत की सुंदरता को देखकर उसे इस बात का ध्यान आता है कि जिसने इस खिलने और मुरझाने वाले फूल को इतनी सुंदरता दी वह स्वयं कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर है, जिसकी कलाकृति में इतना आकर्षण है, वह स्वयं कितना अच्छा होगा, कितना सुंदर होगा। इस तरह से आप देखेंगे कि इस सारी सृष्टि में जैसे जैसे कल मैंने सेवा में निवेदन किया था कि मनुष्य का जीवन ही वह संधि स्थल है जिसमें ईश्वरीय विभूतियाँ इस नाशवान संसार में प्रकट होकर मानव हृदय को शीतलता देती हैं, तरलता देती हैं, सरसता देती हैं, आनंद की वृद्धि करती हैं। शास्त्रों की बड़ी महिमा है, उसमें ब्रह्म का रूप निरूपण लिखा गया है, माया के कार्य का विवरण दिया गया है, दुख निवृत्ति के उपाय लिखे गए हैं, भगवत भक्ति के रस और आनंद का वर्णन किया गया है। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ, और आपके लिए भी सोचने की एक बात सामने रख के देख बता रही हूँ मैं, कि आप सोच करके देखिए कि शास्त्रों में जो जो संसार का और जीवन का और परमात्मा का सत्य बताया गया है, लिखा गया है, तो शास्त्र में लिखा गया है, बहुत सरस सरस बातें लिखी गई हैं, लेकिन जहाँ इस सरसता की चर्चा है वहाँ रस की अनुभूति नहीं है। रस की निष्पत्ति कहाँ होती है? जो मनुष्य शास्त्रोक्त सिद्धांतों को अपने द्वारा ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, आचरण में लाता है, तो रस की निष्पत्ति मनुष्य के हृदय में होती है, शास्त्र जहाँ लिखे गए हैं उस कागज के पृष्ठों में नहीं होती है। ठीक है ना जी? तो सजीव मनुष्य, सचेत मनुष्य, विवेक के प्रकाश से प्रकाशित मनुष्य इस सृष्टि को अधिक से अधिक सेवा दे सकता है, सुंदर बना सकता है, आनंद फैला सकता है, और सत्संग से वंचित विवेक का अनादर करने वाला मनुष्य, बल का दुरुपयोग करने वाला मनुष्य, सुख की वासना में लिप्त रहने वाला मनुष्य, मनुष्य ही वह दोष करता है कि जिससे सृष्टि का चित्र है वह विकृत हो जाए, प्रेम की जगह पर द्वेष फैल जाए, शांति की जगह पर संघर्ष फैल जाए। ठीक है, अब सोच करके देखिए, हम सब लोग मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते कुछ विवेक का प्रकाश जो जो समय समय पर हमें सत्य और असत्य का विवेचन कराता रहता है, क्या सही है क्या गलत है इस बात का परिचय देता रहता है, तो क्या सही है क्या गलत है, क्या ग्राह्य है क्या त्याज्य है, क्या ज्ञातव्य है क्या प्राप्तव्य है, इन बातों का पता बिना किसी स्कूल और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में गए ही भाई बहनों को होता है। अगर मनुष्य निज ज्ञान के प्रकाश में देखकर विचार करे कि मेरे सामने जो दृश्य जगत दिखाई देता है उसके साथ मुझे क्या करना है, और जिस सृष्टिकर्ता के संबंध में सुनाई देता है, सृष्टिकर्ता दिखाई नहीं देता है सुनाई देता है, उस सृष्टिकर्ता के साथ क्या करना है, तो हम ही वह माध्यम है। मनुष्य के ही लिए यह महत्वपूर्ण बात है कि सृष्टि के स्वरूप पर विचार करे और उसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा ही करे, परमात्मा के संबंध में विचार करे और उनका हमारे जीवन के साथ इस वर्तमान क्षण में जिस समय हम सब लोग बैठ करके परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं उस समय में उनका हमारे साथ क्या सीधा संबंध हो सकता है, ईश्वर विश्वास का क्या प्रभाव अपने जीवन पर हो सकता है, इस पर विचार करें। तो आप हैं कि जो देखे हुए जगत की सेवा करके सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं, और आप ही हैं जो अदृश्य परमात्मा के साथ अपना नित्य संबंध स्वीकार करके उनके प्रेम रस से जीवन में जन्म जन्मांतर के अभाव को मिटा सकते हैं। ये दोनों बातें हो सकती हैं। अब अपने लोगों से गलती क्या होती है इसको भी जरा देख लीजिए। तो अनेक प्रकार के संकल्पों को लेकर हम पैदा हुए, अगर संकल्प रहित हो गए होते, इच्छाओं की निवृत्ति हो गई होती, शरीर धारण करके संसार के संपर्क से सुख भोगने की वासनाओं का अंत कर दिया होता हमने, तो जन्म मरण की बाध्यता मिट गई होती। हमने अब तक ऐसा नहीं किया, इसका प्रमाण यह है कि हमको शरीरधारी बनना पड़ा है। और जन्म इस बार की बात मैं कह रही हूँ कि जन्म ले करके भी कहीं 20 वर्ष बीत गए, कहीं 40 वर्ष बीत गए, कहीं 60 वर्ष बीत गए, कहीं 80 नजदीक आ रहा है, अभी भी हमारी अतृप्ति मिटी नहीं, कामनाएं मिटी नहीं, इन संकल्प हम हुए नहीं, अभी भी हमारी ये दशा है। तो जन्म लेने के बाद कितना समय हमने इस संसार में बिताया उसका कोई हिसाब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन संकल्पों के कारण से मुझे जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ा, उन संकल्पों को मैंने खत्म किया अथवा अपने साथ हम ढो रहे हैं कि जैसे बाध्य होकर जन्मे थे वैसे बाध्य होकर मरने की तैयारी कर रहे हैं। सोचना पड़ेगा। अब अपने अपने को सामने रखकर देखकर सोचिए, हम लोग मृत्यु रहित जीवन पसंद करते हैं, तो उस पसंदगी के अनुरूप कुछ अपने को पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो अब सोच करके देखो कि क्या हमने जो जीवन बिताया इस धरती पर, सूर्य का प्रकाश और प्राण वायु लेना और धरती पर आश्रय लेना, आकाश में अवकाश लेना, प्रकृति की संपत्ति से शरीर का पालन पोषण करना, इतना जो हमने सहयोग लिया प्रकृति से, समाज से, परिवार से, माता पिता से, सरकार से, ये सब ले करके अपना काम हमने पूरा किया कि नहीं किया, इस संबंध में सोचना पड़ेगा। तो जिन संकल्पों के कारण हमें जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ा, उन्हीं संकल्पों को अभी तक अपने में रखा है तो मरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा। और अनुभवी संत जन का यह अनुभव है, महाराज जी ने हम लोगों को अपना अनुभव बताया और उसके आधार पर मानव जीवन का यह सत्य हमारे सामने रखा कि मृत्यु स्वयं में दुख देने वाली अथवा भय देने वाली बात नहीं है। मृत्यु से भयभीत कौन होता है? जो शरीर में आसक्त रहता है उसको मृत्यु से भय होता है, अन्यथा और सब प्राकृतिक कार्य जिस प्रकार से हो रहे हैं वैसा ही यह एक स्वाभाविक कार्य है प्रकृति का। कुछ अणु परमाणुओं के संगठन से एक शरीर बन गया है, प्राण शक्ति के द्वारा वो मेंटेन किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, और अणु परमाणुओं के विघटन से मृत्यु हो जाती है। तो शरीर का बन जाना, बदल जाना, बिगड़ जाना और मिट जाना ये बिल्कुल प्राकृतिक तथ्य है, लेकिन मेरे लिए यदि मृत्यु बहुत ही भयावह रूप धारण करती है तो क्यों? तो इस कारण से ऐसा होता है कि हम शरीर को बनाए रखना पसंद करते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि चूंकि हम जीना पसंद करते हैं इसलिए मरने में भय होता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जीना ना पसंद करिए, सो नहीं है, अच्छी जिंदगी जीना पसंद करिए, अमर जीवन के आनंद को पसंद करिए, अविनाशी अस्तित्व में स्थित होने का पुरुषार्थ कीजिए। और शरीर के निर्माण और विनाश को तो ऐसा ही मानना चाहिए जैसा कि सूर्योदय हुआ तो उठ करके हम लोगों ने सूर्य के दिए हुए प्रकाश का उपयोग करना आरंभ किया, और संध्या हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है, तो हम लोग शिकायत थोड़े करते हैं कि क्यों शाम हो गई, जानते हैं कि सूर्योदय हुआ है तो सूर्यास्त होगा, तो जब तक प्रकाश है तब तक प्रकाश का उपयोग किया। ऐसे ही मनुष्य को जो शरीर मिलता है तो जब तक वो है तब तक उसका उपयोग करना चाहिए, और उसके रहते रहते अपने अविनाशी अस्तित्व में इतना आनंदित हो जाना चाहिए कि शरीर कब नाश हुआ इसका अपने को पता भी न चले, कब है और कब गया ऐसा हो सकता है। और महाराज जी ने अपना एक अनुभव सुनाया था हम लोगों को कि वो बद्री केदार सब जगह की यात्रा कर करके बहुत बहुत दिनों तक पैदल पैदल चलते थे, आए नीचे उतर के तो एक नगर में शरीर बहुत रोगी हो गया, तो करीब करीब 40 दिन बीत गए थे, हिल डायरिया हो गया था और बहुत ज्वर रहने लगा था, शरीर बहुत कमजोर हो गया था। तो जो मित्र उनकी सेवा कर रहे थे उन्होंने चिकित्सकों को बुलाया था, चिकित्सक लोग भी बहुत मित्र थे स्वामी जी महाराज के, और क्योंकि परमात्मा से उनकी मित्रता का संबंध था इसलिए वो सबको मित्र ही मानते थे, शिष्य किसी को बनाया ही नहीं। तो उन्होंने कहा, महाराज बता रहे थे कि चिकित्सकों ने देखा और कहा कि नाड़ी की गति तो बहुत खराब हो रही है, लगता है कि अब शरीर रहेगा नहीं। तो साधु संतों की सेवा जैसी होती है उन लोगों ने की, जमीन को साफ कर दिया, लीप दिया, मृगशाला बिछा दिया, कुछ बिछा दिया और स्वामी जी महाराज के शरीर को बिस्तर से उतार करके जमीन पर लिटा दिया और अपना भजन हो रहा है, बातचीत हो रही है। तो महाराज ने कहा कि मेरे कान में आवाज पड़ी कि एक मित्र ने कहा कि बाबा जी तो चले, तो मैंने सोचा कि देखें जरा मृत्यु कैसी होती है। तो जब मैं मृत्यु को देखने लगा तो मुझे बड़ा आनंद आया, यह जो एक शरीर की उपाधि बीच में रह जाती है तो बहुत बार ज्ञाननिष्ठ संतों को भी शरीर का सहयोग लेकर संसार की सेवा के लिए उसके साथ तादात जोड़ना पड़ता है। और जब सेवा का अवसर चला गया, अब ये मिटने वाला है, तो वे जल्दी से जल्दी उससे स्वयं अलग हो जाते हैं कि अब ये जाने वाले है तो जाए, अब इसकी जरूरत खत्म हो गई। तो कहा महाराज जी ने कि मैंने देखा कि शरीर बिल्कुल शांत स्थिर पड़ा हुआ है और मित्र लोग चारों ओर उदास खड़े हैं और मुझे बड़ा आनंद था, मुझे बड़ा आनंद था, इतना हल्कापन जीवन में और उस शरीर से असंग हो जाने पर, उसके तादात्म को तोड़कर अलग हो जाने पर इतना हल्कापन, इतना आनंद था। तो मैंने कहा, महाराज जी की वाणी है, मैंने कहा कि भाई मरना तो बड़ा बढ़िया है, लोग दुखी काहे को होते हैं, ये तो बहुत आनंददायक तथ्य है जीवन का। कुछ काल ऐसे रहा और फिर थोड़ी देर में नाड़ी की गति भी ठीक होने लग गई और सब ठीक ठाक हो गया, शरीर को कुछ दिन रहना था, करीब 40 वर्ष पहले की बात है, उसके 40 वर्ष बाद उन्होंने शरीर त्याग किया है। तो ये उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। और मुझको याद है कि एक बार चंद्र ग्रहण लगा था, रात्रि को हम लोग जहाज से उतरे थे भागलपुर में घाट पर, तो ग्रहण का समय था तो महाराज जी स्नान करने के लिए जल्दी से गंगा जी में घुस गए और बुलाने लगे मुझको कि आओ, तुम भी आओ। तो मैं नहीं जा रही थी, रात्रि का समय था, सर्दी के दिन थे और हमारे चमड़े पर कुछ दोष था, एक्जिमा जैसा कुछ दाने उन्हें निकले थे। तो हमने कहा इस ठंडे जल से वो बहुत बढ़ जाएगा, महाराज मैं नहीं आऊंगी। तो बड़े उत्साह में भर कर कहा कि देवकी जी, शरीर को लेकर के जो स्वयं पुण्य कमाने के लिए स्नान करेगा उसको ये जल नुकसान करेगा, तो तुम अपने लिए क्यों नहाना सोचती हो? कितने लोग घरों में पड़े होंगे असमर्थता में, जो गंगा जी के तट पर आ नहीं सके, उनके लिए स्नान करो, तुम्हारे शरीर पर कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो व्रत उपवास स्नान तीर्थ दान ये सब जो लोग अपने कल्याण के लिए करते हैं शरीर की सहायता से, उनके शरीर की आसक्ति नहीं मिटती है। और जो लोग शरीर की सहायता से साधन तप भजन ध्यान स्नान दान तीर्थ यात्रा ये समाज के कल्याण के लिए करते हैं, दुखी जनों के कल्याण के लिए करते हैं, असमर्थों के कल्याण के लिए करते हैं, उनकी शरीर की आसक्ति भी मिट जाती है और उनके शरीर पर कोई असर भी नहीं होता। तो तुम क्या सोच रही हो, आओ। अब इतना महाराज जी ने जोर से कहा तो अब क्या करें, साहस तो कम ही था, लेकिन संत की वाणी का बल लेकर के मैं भी घुस गई जल में और मुझे पूरी तरह अच्छी तरह से याद है, बहुत सुंदर चित्र मैंने देखा, बहुत अच्छा दृश्य मैंने देखा, शरीर से अलग मैंने अपने अस्तित्व को देखा और शरीर बार बार जल में महाराज जी डुबा रहे हैं, निकाल रहे हैं, डुबा रहे हैं, निकाल रहे हैं, जल से भीगने का तो मुझको जरा भी आभास ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं लगा कि ठंडा जल इस चमड़े पर लग रहा है, ऐसा नहीं लगा कि सर्दी की रात है तो मुझे ठंडक लग रही है, ना मौसम की सर्दी का असर हुआ मुझ पर, न जल में भीगने का असर हुआ मुझ पर। और इतने हजार हजार लोग उसी समय घाट पर नहा रहे थे, एकदम प्रत्यक्ष मुझको दिखाई दे रहा था कि सब एक ही का चित्र है, ये विविध रूप शरीर नहीं दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक ही विराट अनेक शरीरों के साथ जल में स्नान कर रहा है। न भीगने का कोई ज्ञान हुआ मुझे, न ठंडक लगी मुझे और न एक जिमा के दोष में कोई तकलीफ बढ़ी मुझे। बहुत स्पष्ट देह धर्म से ऊपर अलग देहातीत अस्तित्व को मैंने अनुभव भी किया और बाकी सब दृश्य को एक का सब रूप है इस अद्वैत का दर्शन भी हुआ। अद्भुत। तो मैं तो बहुत ही आनंद में थी, मैंने कहा कि महाराज आपने तो केवल ग्रहण का दर्शन ही नहीं कराया मुझे, बहुत कुछ ऐसा मुझे दर्शन करा दिया कि जो कि वर्षों के अभ्यास से नहीं हो सकता था। तो उस वीतराग पुरुष के व्यक्तित्व में यह बल था और उन्होंने मानव जीवन के कल्याण के लिए जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वो पुस्तकों से पढ़कर तो किया नहीं, 10 वर्ष की उम्र में दोनों आंखें चली गईं। तो जो कुछ उन्होंने जीवन के दर्शन के संबंध में लिखा है वह सत्य की अभिव्यक्ति के बाद अपने अनुभव के आधार पर लिखा है। तो ये बात मुझे इतनी अच्छी लगती है, आप सभी भाई बहनों के सामने भी मैंने प्रस्तुत कर दिया, मृत्यु रहित जीवन, अमर जीवन हम सब लोगों को चाहिए। अब आप सोच करके देखिए, अपने ही सुख के लिए खाने वाला व्यक्ति शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर सकता, अपने ही सुख के लोभ से प्रेरित रहने वाला व्यक्ति समाज का हित नहीं कर सकता, परिवार का हित नहीं कर सकता, और जिसने शरीर को संसार की संपत्ति मान लिया और धन का अर्जन करेगा तो पूरे समूह के लिए, और भोजन करेगा तो शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, और जप करेगा, तप करेगा, ध्यान करेगा, व्रत करेगा, तीर्थ की यात्रा करेगा, कोई भी पुण्य कर्म शरीर की सहायता से करेगा तो सारे समाज के हित के लिए करेगा, कल्याण के लिए करेगा। ऐसा जो शरीर और संसार के अविच्छिन्न संबंध का निर्वाह करता है वो व्यक्ति शरीर धर्म से ऊपर उठ जाता है, शरीर की आसक्ति से मुक्त हो जाता है और शरीर के नाश से पहले अपने अविनाशी अस्तित्व का अनुभव भी पा लेता है। इतनी बड़ी बात हो सकती है तो हम अमर हैं, हमारा नाश नहीं होगा, यह दार्शनिक सत्य जो है वह हम लोगों के जीवन में अभिव्यक्त हो सकता है। कैसे हो सकता है कि संसार का भाग जो शरीर है उसको किसी भी प्रकार से अपने काम में मत लगाओ, संसार के काम में आने दो, परिवार के काम में आने दो, उस शरीर के साथ भी सुख भोग की वासना से प्रेरित होकर अत्याचार मत करो। आप शरीर को बहुत पसंद करते हैं, सुख भोग का माध्यम तो यही है, तो महाराज जी कहते हैं कि अगर उसमें भी तुम लिप्त हो जाओगे तो जिस शरीर को बहुत पसंद करते हो उस शरीर को तुम जल्दी जल्दी मृत्यु का ग्रास बना दोगे। जितना अधिक सुख भोग में लिप्त होना पसंद करोगे उतनी जल्दी ही बुढ़ापा भी आ जाएगा, मृत्यु भी आ जाएगी, प्राण शक्ति भी खत्म हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए, तो भाई इस पर भी दया रखो। क्या दया रखें इस पर, तो ये तो प्रकृति की संपत्ति है, यह तो संसार की वस्तु है, यह मेरे काम आने वाली नहीं है। कैसे नहीं आने वाली है कि अगर इसका सहारा लेकर सुख भोग में मैं लग जाऊं, तो इसका भी नाश हो जाएगा और मुझ में भी सुख भोग की वासना इतनी बढ़ जाएगी कि हाय हाय करते जीना और हाय हाय करते मरना हो जाएगा। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, ये केवल गाने में रह जाएगा, भजन में रह जाएगा और कहीं किसी काम में नहीं आएगा। इसलिए इसको तो बर्बाद मत करो, सचेत होकर रहो। और दूसरी बात क्या है कि आपको जो दुख सुख से अतीत आनंद चाहिए, आपको जो जन्म मरण से परे अविनाशी जीवन चाहिए, आपको जो संयोग वियोग से परे नित्य योग चाहिए, उसमें तो ये शरीर किसी प्रकार से सहायता दे ही नहीं सकता। नाशवान शरीर भला अविनाशी जीवन की प्राप्ति में क्या सहायता देगा? दे सकता है? नहीं दे सकता है। लेकिन आज कितना भ्रम हो गया साधक समाज में कि यूँ आसन लगाओ, यूँ ध्यान लगाओ, अब यहाँ रखो, अब यहाँ रखो, अब यहाँ रखो। अरे भाई, कहीं भी रखो, उस अविनाशी जीवन में स्पेस एंड टाइम कहीं है क्या? स्थान और काल का कोई सीमा है क्या? अगर वो सीमा है तो असीम से अभिन्न कैसे होगा, सोच कर देखो। तो शरीर तो ना भोग प्रवृत्ति के लिए है और ना योग की साधना के लिए है। योग तो होता है अविनाशी का अविनाशी से। समझ में आता है? नित्य योग जो संयोग और वियोग दोनों से परे है, वह नित्य योग जीवन में अभिव्यक्त कैसे होता है? तो इस व्यक्तित्व में जो अविनाशी आपका मैंपन है, उस मैं का नित्य योग होता है उस अविनाशी से। तो अविनाशी को अविनाशी से मिलना है, उसमें नाशवान शरीर क्या मदद करेगा? कर सकता है जी? नहीं कर सकता है। तो हम सब भाई बहनों को बहुत अच्छी तरह से जीवन के इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। स्वामी शरणानंद जी महाराज का सत्य है कि सनातन धर्म का सत्य है कि आर्य समाज का सत्य है, ये हिंदुइज्म है कि मोहम्मदनिज्म है कि क्रिश्चियनिज्म है कि जैनिज्म है, ये इज्म नहीं है। मानव जीवन का वैज्ञानिक और दार्शनिक सत्य है। क्या? शरीर को अगर अपने लिए मानोगे तो नाशवान शरीर से तादात्म्य तुम्हारा नहीं टूटेगा। तो मैं अमृत पुत्र हूँ ये कल्पना में तो रह सकता है, लेकिन जीवन का सत्य नहीं बनेगा। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या ये सिद्धांत आपके मस्तिष्क की खुराक बन के रह जाएगी, लेकिन उस ब्रह्म स्वरूप से अभिन्न होकर सत्य का आनंद आपको नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? पहले पहल जब ये सब सिद्धांत मेरे सामने आए तो आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन कला, इस शीर्षक से मैंने एक निबंध लिखा था। बहुत पुरानी बात हो गई, कब छपी थी याद नहीं है। तो महाराज ने एक शुद्ध सत्य के आधार पर जीवन शैली प्रकट किया और उन्होंने कहा कि देखो, शरीर त्रिकाल में भी तुम्हारा होकर रह नहीं सकता है। भौतिक तत्वों से बना है, भौतिक विधान से बना है, उसी पर ये चल रहा है और उसी के अनुसार मिटेगा। तो शरीर और संसार दोनों एक जाति के हैं, इसलिए इस शरीर के द्वारा अगर तुमको कुछ करना ही है तो संसार के हित को दृष्टि में रख के करो। आप कहेंगे कि बृहद संसार, इसकी मैं क्या सेवा करूं? तो महाराज जी कहते हैं कि भैया, कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि मेरे द्वारा इस संसार को कष्ट ना पहुंचे। इतना तो कर सकते हैं ना? बृहद संसार है, बहुत लोग भूखे हैं, तो सब भूखे को आप खिला दें, ये तो सामर्थ्य किसी व्यक्ति की नहीं है। बहुत लोग बीमार हैं, सब बीमारों को आप चिकित्सा करा दें, सेवा करा दें, ये आपके बस की बात नहीं है। तो निकटवर्ती जनसमुदाय की यथाशक्ति क्रियात्मक सेवा भले करिए। निकटवर्ती जनसमुदाय, उसमें शरीर भी है, परिवार भी है, समाज भी है, पड़ोसी भी है, संबंधी भी है, सब है, तो इतना तो आप क्रियात्मक करिए। लेकिन जीवन में इस सत्य को स्वीकार तो करिए कि जब शरीर संसार का ही है और संसार की शक्तियों से ही संचालित है और उसी का होकर रहेगा, मेरे को ये शरीर कुछ देने वाला नहीं है, तो कम से कम इस व्रत को तो धारण करिए आज से, अभी से, कि इस शरीर को लेकर के मैं संसार की किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। अगर इतनी ही मनुष्यता हम लोगों ने अपने जीवन में जागृत कर लिया तो समाज से बहुत बड़ी बुराइयों का समूह मिट जाएगा कि नहीं मिटेगा। हर व्यक्ति अगर ये सोच ले कि शरीर और संसार का अविच्छिन्न संबंध है और मुझे किसी प्रकार से शरीर के माध्यम से संसार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, अगर हर व्यक्ति ऐसा सोच ले तो समाज से बुराई मिट सकती है कि नहीं? मिट सकती है। अगर प्रश्न करेंगे तो उत्तर मिलेगा सत्संग के प्रकाश में, विवेक के प्रकाश में, जीवन के अध्ययन से स्पष्ट उत्तर मिलेगा कि भाई यह संसार मुझे जो चाहिए सो नहीं दे सकता, मुझे अमर जीवन चाहिए। नाशवान संसार आपको अमर जीवन देगा ये नहीं देगा। आपको संयोग वियोग से रहित नित्य मिलन वाला साथी चाहिए जो कभी भी साथ न छोड़े, ऐसा साथी संसार देगा नहीं देगा। मुझे उस साथी की इतनी प्रिय संगति चाहिए कि जिसकी संगति से, जिसके साथ से जीवन का रस उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाए, कभी घटे नहीं, प्रियता में कभी क्षति न हो, ऐसी संगति संसार में कहीं मिलेगा नहीं। तो निश्चय हो गया कि मुझे जो चाहिए वो संसार नहीं दे सकता। संसार की पहुंच कहाँ तक है? संसार की पहुंच शरीरों तक है, उसके आगे नहीं है। इसलिए यह शरीर अपने काम का नहीं है। अब अपने काम का नहीं रहा तो फिर किस काम का है? तो अब तक जो मैंने इसके माध्यम से सुख भोग किया था, उस भोग की वासना को मिटाने के लिए, पुराने रागों से मुक्त होने के लिए शरीर के द्वारा संसार की सेवा करो। तो अगर शरीर हमारे लिए कहीं उपयोगी हो सकता है तो पीड़ित जनों के आंसू पोंछने में हो सकता है, और कहीं इसका कोई उपयोग नहीं है। फिर अब जिस परमात्मा के संबंध में हम लोगों ने सुना है, उसके साथ अपने को क्या करना है? तो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ लोग तो अपने को बहुत ही वैज्ञानिक कहते हैं और रैशनल कहते हैं और चिंतनशील कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। तो वे लोग कहते हैं कि भाई सुनी हुई बातों पर हम विश्वास नहीं करते, छोड़ दो, हटा दो उनके जीवन में से परमात्मा को। तो महाराज जी कहते हैं कि भैया तुम छोड़ दो परमात्मा को और बड़ा अच्छा होगा कि सब लोग ईश्वर को इनकार कर दें, तो मजा आएगा मुझको, मैं और वो दो ही रह जाएंगे, खूब आनंद मनाएंगे। ईश्वर अपने अस्तित्व के लिए परम स्वाधीन है, दुनिया के लोग उसको मानेंगे तो उसकी विशेषता बढ़ेगी और नहीं मानेंगे तो उसकी विशेषता घट जाएगी, ऐसा घटिया परमात्मा नहीं है। तो जो न मानना पसंद करे उसके लिए ये चर्चा नहीं है। उसके लिए कौन सी चर्चा है? तो भाई आप सोच करके देखिए, अगर परमात्मा को मानने के लिए तैयार आप नहीं हैं, तो उसके अतिरिक्त आपके जीवन में कौन सी बात है जिसको मानना आपके लिए सत्य प्रमाणित होगा? अगर विचारक हैं तो विचार करिए। तो विचारकों ने क्या कहा? तो नहीं 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 नहीं, मैं क्या है तो मेरा अमुक नाम है, तो नहीं ये सत्य नहीं है, पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, मेरी ये जाति है तो ये सत्य नहीं है, मैंने माना है ये मिट जाएगा, मेरा ये स्थान है ये सत्य नहीं है, पहले नहीं था आगे नहीं रहेगा। तो अगर परमात्मा को मानने के लिए आप तैयार नहीं हैं, तो किसी भी मान्यता को स्वीकार करने में बुद्धिमत्ता तो नहीं है, तो क्या करना चाहिए, तो शरीर के द्वारा संसार की सेवा करनी चाहिए और सब असत्य प्रतीतियों स्वीकृतियों को अस्वीकार कर देना चाहिए, तो नहीं की निवृत्ति हो जाएगी, तो वही परमात्मा रह जाएगा जिसको आपने मानना पसंद नहीं किया था, वही रह जाएगा। तो महाराज जी के सिद्धांत के अनुसार ये कहते हैं कि भाई ईश्वर तो इतना जबरदस्त है कि वो मानने वाले पर भी जादू करता है और नहीं मानने वाले पर भी करता है, तो हम क्यों निहोरा करें, हम क्यों प्रार्थना करें कि तुम मानो मत मानो। लेकिन असत्य की निवृत्ति के बिना शांति मिलेगी नहीं, और असत्य की निवृत्ति तुम्हारे जीवन में से हो जाएगी तो सत्य के रूप में वही रह जाएगा जिसको मैंने परमात्मा कहा है, वो हम मैं वही हूँ, तो वह मुझमें मिल गया, मैं उसमें मिल गया, जो जी में आए सो कह लेना, लेकिन है वो एक अकेला ही, भक्तजन उसको परमात्मा कहते हैं। अब हो गया वेदांत का दर्शन पूरा हो गया, अब आस्तिकता ले लो। अब सुने हुए परमात्मा के प्रति मनुष्य को क्या करना चाहिए, रामकृष्ण मिशन के एक संत विदेश से घूम करके आए, तो जहाँ मैं महाविद्यालय में पढ़ाती थी उस महाविद्यालय में आए और उन्होंने कहा कि हम छात्राओं से मिलेंगे, तो एक मीटिंग बुलाई गई, हम सब लोग मिले उनसे, तो बातचीत करने लगे। तो संत तो हमेशा अच्छी बातें करते हैं, बहुत सी अच्छी बातें उन्होंने की, एक बात बहुत मजेदार लगी मुझे अभी भी याद है, कहने लगे कि विदेश में फ्रांस में शायद एक बहन मुझे मिली, तो कहने लगी कि स्वामी जी मैं भगवान को मानना चाहती हूँ। तो स्वामी जी ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है बहन, मान लो। तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझसे माना नहीं जाता है। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं माना जाता है तो छोड़ दो। तो बहन कहने लगी कि महाराज मुझसे छोड़ा नहीं जाता है, तो मान लो तो माना नहीं जाता है, छोड़ दो तो छोड़ा नहीं जाता है। अब हम लोग इस वर्तमान में जिस समय बैठे हैं जीवन की चर्चा करने के लिए, आप सोच करके देखिए कि ऐसी ही दशा हम सब भाई बहनों की नहीं है क्या, एक है। उस ईमानदार महिला ने खुले शब्दों में कह दिया अपने मन का हाल कि महाराज मैं मानना तो चाहती हूँ लेकिन माना नहीं जाता। तो संत ने कहा कि नहीं माना जाता है मेरी बहन, छोड़ दो। तो महाराज छोड़ा नहीं जाता। अब इस विषय पर थोड़ा गंभीर होकर सोचिए, परमात्मा के संबंध में कभी हमारे जीवन में प्रश्न उठता है, जरूरत महसूस होती है तो हम लोग मान भी लेते हैं, और जरूरत खत्म हो जाती है तो हम लोग भूल भी जाते हैं, तो कभी भूल जाते हैं कभी मान लेते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, और यूं ही इसी असमंजस में, इसी दुविधा में, इसी विकल्प सहित विश्वास में, कभी विश्वास करो कभी विकल्प करो, कभी संदेह करो कभी कभी मानो कभी न मानो, इसी ढंग से एक एक लंबी सी अवधि जीवन की निकल जाती है और हम लोग उस आनंद के अगाध सागर से रिक्त रह जाते हैं, विमुख रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। तो यह एक बहुत ही विचारणीय विषय है कि क्या मनुष्य का परमात्मा से इस जीवन में, इस वर्तमान में जो सीधा संबंध है, और उस संबंध की मधुरता की अभिव्यक्ति अभी हो सकती है शरीर के नाश होने से पहले, तो क्या ये आचरणीय नहीं है, क्या यह ग्राह्य नहीं है, क्या जीवन की उस उच्चतम विकास तक पहुंचने के लिए मृत्यु से पहले हम लोगों को तैयार नहीं होना चाहिए? बोलिए, होना चाहिए। तो अब देखिए, अब जब जीवन में परमात्मा की चर्चा आती है, किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते, तो मैंने एक बार बैठकर सोचा कि क्या कारण है कि उसकी चर्चा किए बिना हम नहीं रह सकते। तो सोचने से मुझे मालूम हुआ कि नाशवान शरीर के साथ तादात्म कर लेने पर इस दृश्यमान आकृति के साथ अपने को जोड़ लेने पर इतने प्रकार के अभावों में हम ग्रस्त हो जाते हैं कि हमसे रहा ही नहीं जाता। जितने अभाव हमारे भीतर पैदा हुए, समर्थ माता पिता पूरा नहीं कर सके, समर्थ पति पत्नी एक दूसरे के अभाव को नहीं मिटा सके, समर्थ संतान माता पिता के अभाव को नहीं मिटा सकी, समर्थ सरकार प्रजा के अभावों को नहीं मिटा सकी, क्या ये आपकी जानी हुई बात नहीं है? जी है। तो मैंने सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि चूंकि संसार के संपर्क से मेरे जीवन के अभाव नहीं मिटे और अभाव की पीड़ा सहन करना अपने को पसंद नहीं है, इसलिए उस विश्वम्भर की कल्पना मेरे जीवन में आ गई कि यहाँ तो कोई नहीं मिलता है, तो संतों ने जिसको कहा है उसको पकड़ो, भक्तों ने जिसको कहा है उसको पकड़ो। तो हमारे आपके जीवन में जो वर्तमान दशा है, वो दशा ही ऐसी बढ़िया है कि ईश्वर की ओर प्रेरित किए बिना रह नहीं सकती, इसलिए तो उसकी जरूरत पड़ गई। अब महाराज जी कहते हैं कि देखा नहीं गया, केवल सुना गया है, तो उस सुने हुए परमात्मा के साथ हम भाई बहनों को क्या करना चाहिए? तो मैं पूछती हूँ कि अब तक हम क्या करते रहे? तो मैं क्या करती रही सो मैं बताती हूँ। संसार जब जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति में असमर्थ प्रमाणित हो गया, तब तब हम उस समर्थ परमात्मा से अनुनय विनय करते रहे, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। तो महाराज जी ने कहा कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं आपकी साधना पर आ रही हूँ, सुने हुए परमात्मा के साथ हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो महाराज जी ने कहा कि मैं तो ईश्वरवादी इसलिए हूँ कि मुझे जो कुछ चाहिए था वह सब उन्होंने बिना मेरे मांगे कर दिया। बड़ी भारी बात है। तो उनसे मांगना क्या है? अगर अगर धन मांगने की बात थी तो बिना मांगे दे ही रहे हैं। आहार मांगने की बात थी तो वो तो शरीर को पैदा करने से पहले आहार का इंतजाम उन्होंने कर ही दिया था। तो मांगोगे क्या?